बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत सही गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मधुए किनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मद्यतम। ग्रीव दोसुमर सिद्ध होई गण नायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाओ गण नायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊ आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋद्धिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्यपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। स्वर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरिका वर्ण धर्म राजावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा जावे से 88 उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावे से 88 उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। कर चोरों विनती करूं दरों चरण पर शीश गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो में बंदी जम गुलाम। कुत्ता हो गुरु देव का रामपाल दास का नाम गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोवा जाऊं तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं जो राखो तो ही रहूं जो देव सखा। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनी होए। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुसलात आद अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाई। कबीर तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बरंच मुनि नारदा तीन के हरदन सुनो। अब गुण किए तो बहुत किए, करत नमनी हारे, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन थार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जे मैं पूत कपूत हूं बहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्षक बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। सूरत करो मम साईया, हम हैं भव जल माही, आप ही बह जावांगे जो तुम न पकड़ोगे बाहर। ए बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़ी, जैसे कागज जहाज का अब सूजे और न ठोरी। परम पिता पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को यह सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। जिन पुण्यात्माओं को मानव शरीर प्राप्त है वो बहुत ही अच्छी आत्माएं हैं, उनसे भी अच्छी वो आत्माएं हैं जिनको सत्संग प्राप्त होता है। आप उन सर्वश्रेष्ठ आत्माओं में से हो जिनको सत्संग प्राप्त हुआ है। इस विश्व में अन्य कोई भी वस्तु सुलभ हो सकती है, लेकिन सत्संग दुर्लभ है। सत्संग उसी को कहते हैं जिसमें केवल सत्य भाषण हो, शास्त्र अनुकूल ज्ञान हो और शास्त्र अनुकूल ही समाधान और साधन हो, भक्ति विधि हो, मंत्र हो, उसको सत्संग कहते हैं। एक पंडाल लगा के, स्पीकर बांध के और उवाबाई बकने मात्र से सत्संग नहीं होता। तो पुण्यात्माओं, इस विश्व में कहीं सत्संग नहीं है। और ये बातें कड़वी अवश्य लगती हैं, इस विश्व में कहीं भी सत्संग नहीं है इस बरवाला सतलोक आश्रम बरवाला के अतिरिक्त। जो पुण्यात्माएं यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है वो ये महसूस करते हैं कि ये संत जो है अभिमानी है, अपने आप को ही श्रेष्ठ सिद्ध करने की चेष्टा करता है। दास अभिमानी नहीं है लेकिन तत्व ज्ञानी अवश्य है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि जो तत्व शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता, आध्यात्मिक लाभ कोई नहीं होता। न उनकी सिद्धि होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनको कोई सुख प्राप्त होता है और न ही उनकी गति होती है, मोक्ष होता है। फिर तुरंत ही श्लोक नंबर 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन शास्त्र कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से भक्ति कर्म करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए, उनके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी अन्य व्यक्ति के कहने मात्र से अपने भक्ति मार्ग को तू चेंज मत कर देना, बदल मत लेना। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो मैंने 12 से लेकर 15 तक, श्लोक 12 से लेकर 15 तक और 16 से लेकर 18 तक जो ज्ञान दिया है वो मेरा विचार है, और उसमें क्या प्रमाण किया है कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी की पूजा व्यर्थ है। फिर अपने विषय में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मुझ ब्रह्म की साधना करते हैं वो चार प्रकार के हैं, एक आरत अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी को छोड़कर तीन जो हैं ये भी व्यर्थ बताए हैं, भले ही वह ब्रह्म साधना कर रहे हैं लेकिन उनकी साधना ठीक नहीं। अपने कहते हैं ज्ञानी जो है ये मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि इन्होंने जान लिया है कि अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए और मानव जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, और ये उद्धार आत्मा, ये नेक आत्माएं परमात्मा की प्राप्ति में समर्पित तो हैं लेकिन ये मेरे वाली ही अनुतम साधना में लीन है। कारण क्या है? क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। तो सातवें अध्याय 19वें श्लोक में कहता है गीता ज्ञानदाता कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। क्या बताया है कि जो चार प्रकार के जिज्ञासु आरत अर्थार्थी और ये ज्ञानी हैं, ये चार प्रकार के साधक हैं, ये मेरी साधना जो करते हैं ये भी बहुत जन्म जन्म के जन्मांतर के किसी अंत के जन्म में मेरी पूजा करते हैं, नहीं तो अन्य उपासना में ही अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते, बहुत से जन्मों के अंत में ये ज्ञानी आत्मा ज्ञानवान मेरी यानी ब्रह्म तक की साधना तक पहुंचते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। वासुदेव का क्या अर्थ होता है, क्या बताना चाहता है कि जो संत ये बतावे कि सर्वशक्तिमान वो पूर्ण परमात्मा ही सर्वेश्वा है। सर्वेश्वा का मतलब है सब कुछ है, सर्वम माने सब कुछ है। सब कुछ का तात्पर्य है कि वही कुल मालिक है और वही पूजा के योग्य है, वही पाप दंड नाशक है और वही पूर्ण मोक्षदायक है। सह महात्मा सुदुर्लभ है, ओए होए, कहते हैं वो संत, वो तत्वदर्शी संत सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ यानी मुश्किल से प्राप्त होने वाला है, अति दुर्लभ है यानी बहुत मुश्किल से मिलेगा। पुण्यात्माओं, ये शब्द दास ने जो बोला है कि इस पृथ्वी पर वर्तमान में कहीं भी सत्संग नहीं है, तो इस बात को सुनना तो आसान है लेकिन हजम करना बड़ा मुश्किल है। इसको हजम कराने के लिए कुछ ऐसी औषधि पिलाई जाती है ताकि ये डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि कहने मात्र से तो सभी अपने अपने ज्ञान को अपनी साधना को श्रेष्ठ मानते हैं, तभी तो वो लगे हुए हैं। यदि उन पुण्यात्माओं को ये पता लग जावे कि हम जो रास्ता पकड़ा है ये हमारा नहीं है, ये रास्ता हमारे घर को नहीं जा रहा है, तो तुरंत त्याग देंगे। अभी तक कोई किसी साइड में भी जा रहा है वो ये सोच रहा है मैं अपने घर को जा रहा हूं। यानी भक्ति मार्ग का अर्थ होता है वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, भक्ति का रास्ता, यानी अपने परमात्मा के पास जाने का वे मार्ग। तो हमने जाना है अपने परमात्मा पूर्ण परमेश्वर के पास, उसकी विधि कौन सी है, उसका तरीका कौन सा है, वो साधन कौन सा है। तो सभी चल पड़े हैं और अब अपने साधन को अपने अपने मार्ग को श्रेष्ठ माने बैठे हैं। और ये दास कह रहा है कि तुम्हारा ये मार्ग परमात्मा की तरफ जाने वाला नहीं है, आपकी साधनाएं आपके मंत्र गलत हैं। तो इसमें नाराज नहीं होना चाहिए, इस बात से आपको अक्षुब्ध नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति विचार किया करते हैं कि ये क्यों कह रहा है कि तेरा मार्ग गलत है, आपके मार्ग को किसी ने गलत बताया है और आपने किसी से सुनकर उस मार्ग को ग्रहण किया है, तो तुरंत पुनर्विचार करना चाहिए और प्रमाण लेना चाहिए। उससे पूछे भी क्यों कैसे गलत बता रहे हो आप, हमें विस्तार से बताइए, फिर उस मार्ग को त्याग देना चाहिए और सुमार्ग को प्राप्त करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। ये बुद्धिमता होती है। और फिर भी नहीं मानते हैं उन अनाड़ी अज्ञानी संतों के द्वारा बहकाए हुए और फिर भी उसी मार्ग पर चलते हैं, वही साधनाएं करते हैं, तो उनके विषय में क्या बताया है। परमात्मा ने अपनी सूक्ष्म वेद में कहा है कि चातुर प्राणी चोर हैं और मूड मुग्ध हैं ठोठ, वह हमारे काम के नहीं उनको दे गड़जोठ। चातुर प्राणी वो संत हैं, वह ऋषि महर्षि नकली जिनको ज्ञान कति नहीं, बात प्रणाम मीठी मीठी, धरती आसमान एक कर देते हैं प्रवचन करते समय ऐसे लतीफेदार कहानी सुना के। उनके विषय में बता रहे हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं और मूड मुग्ध हैं ठोठ, जो ये दास ज्ञान बता रहा है आपको, प्रमाण दिखा रहा है, और फिर भी इनको नहीं मानते हैं, कहते वो ठोठ हैं मूड हैं। इस ज्ञान को जो दास आपको प्रमाण सहित दिखा रहा है और फिर भी स्वीकार नहीं करते, उनके बारे में बताया है कि वो मूड हैं, फिर वो उनकी हमें आवश्यकता भी नहीं है, वो वहीं पड़े रहे, उनको दो गलजोट, जैसे एक पशु के साथ दूसरे पशु को गले से बांध दिया करते, वो जो इकट्ठे करके फिर वो इकट्ठे धक्के खाए जा। तो कहने का यहां तात्पर्य ये है कि जो इतने प्रमाण सुनकर भी नहीं मानता है, देखकर भी आंखों नहीं मानता है, तो मूड है मूर्ख, वो पड़ा रहे फिर उन्हीं के पास, उन चातुर प्राणियों के पास। फिर बताते हैं बीजक की बाता कहें, ये बीजक नाही हाथ, वो पृथ्वी डोबण उतर रे कह कह मीठी बात। वो संत वो नकली वो काल के दूत इस पृथ्वी को नष्ट करने के लिए, पूरे मानव समाज को डुबोने के लिए वो जन्म प्राप्त किया है उन्होंने, मीठी मीठी बात बनाकर दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना दे रहे हैं। पुण्यात्माओं, कोई भी वस्तु किसी भी चीज का हम निर्णय करना चाहते हैं, किसी चीज की हम तुलना करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई आधार मानना होता है। आध्यात्मिक मार्ग का आधार हमारे सदग्रंथ हैं। आध्यात्मिक मार्ग जो है इसके ऊपर हमने चलना है, ये हमारा मैप है, मानचित्र है, और इस मैप के अनुसार हम चल रहे हैं तो सही है। यदि हम इस मैप के विपरीत चल रहे हैं तो हमारा मार्ग गलत है। तो मान लीजिए आप 20 किलोमीटर चले गए, 100 किलोमीटर चले गए कुमार्ग पर, जाना था आपने दिल्ली और पहुंच गए आप सिरसा से भी आगे हिसार से, तो वहां जाकर आपको कोई कहता है कि आप कहां जा रहे हो, वो कहे कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, उसको फिर कोई बताए कि नहीं ये मार्ग दिल्ली वाला नहीं है, अब तो बहुत विपरीत आ गए हो, दिल्ली मार्ग तो वापस जाइए, हिसार से पीछे जाइए आप आगे को। तो बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत वापस हो लेगा निर्णय करके, एक दो से चार से और पूछे और मानचित्र फाइनल फैसला करेगा, उस मानचित्र से भी कंपेयर करके फिर अपना दिशा अपना मार्ग बदल लेना चाहिए। कई पुण्यात्मा कहते हैं कि हमने तो 20-20 वर्ष हो गए नाम लिए न, अब हम कैसे छोड़ें उस गुरुजी के मार्ग को, अब हम इतने इतना समय हमने बर्बाद कर दिया, इतना समय हमारा चला गया, इसका क्या होगा, क्या होता इसका, ये तो गया तो गया, अब इसका क्या होता। जैसे हिसार से सिरसा पहुंच गए, अब कोई वहां इस बात पर अड़के बैठ जाए कि मैं तो इस मार्ग में ना छोड़ूं क्योंकि मैं तो 100 किलोमीटर चल लिया, अरे चल तो लिया लेकिन विपरीत दिशा को चल लिया, ये तो वापस आना पड़ेगा, जितना आगे जाएगा उतने दूर होगा। तो पुण्य आत्माओं को चाहिए कि तुरंत जब ये ज्ञान को ग्रहण करें तुलनात्मक तरीके से स्वयं भी अपने दृष्टिकोण से सोचें, और जिस जब आपके समझ में आ जाए क्या कति गलत जा रहा हूं तो तुरंत मुड़ जाना चाहिए। न्यू क्या कि 20 साल का क्या होगा, क्या होता 20 साल का, 100 किलोमीटर का क्या होता, दूर आ गया तो वापस हो उसी को, तो तुरंत ही वापस आ जाना चाहिए, तो अपने घर की तरफ हम चल पड़ेंगे और पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार कई प्रकार की मन में धारणाएं बनी हुई होती हैं, कह देते हैं कि कोई कहता भी गुरु नहीं बदलना चाहिए, भाई ये बिना ज्ञान की बातें हैं, ये कति अनजान आदमी का आकर ऐसी बातें हैं, गुरु नहीं बदलना चाहिए। और कई एकादी बहन तो इसी और दूसरे पंथाड़ी ऐसी मूर्ख बातें कर देती हैं, कहते हैं गुरु बदल लिया तीसा खसम बदल लिया, अरे मूर्खो कहां गुरु का दर्जा, कहां पति का दर्जा, गुरु तो एक डॉक्टर है और डॉक्टर से एक डॉक्टर से इलाज नहीं हो रहा है तो तुरंत त्याग देना चाहिए, उसके द्वार पर मरना काय की समझदारी है, जब उसने कहेगा ना मेरा ट्रीटमेंट सारा गलत दे रखा। तो ऐसे हम ऐसी नालायक विचारों से और हम अपने आप भी फंसे रहते हैं और एक दूसरे ने और उलझा लेते हैं। अब हम ये निर्णय करना चाहते हैं, आध घंटे का सत्संग आपको देंगे, कि इस दास ने कहा कि न तो ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी सत्संग नहीं इनके पास, यथार्थ ज्ञान नहीं, सत्संग का अर्थ होता है यथार्थ भक्ति ज्ञान मार्ग, न ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान, फिर अन्य इनके पुजारियों के पास होगा कहां से, अंडरस्टूड है बुद्धिमान के लिए, कहते हैं समझदार को संकेत ही बहुत होता है। अब जैसे श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत अर्थात दुर्गा पुराण में, शक्ति पुराण में 28-29 पृष्ठ पर लिखा है कि ब्रह्मा नारद जी से व्यास जी पूछ रहे हैं कि ये विष्णु जी भी तपस्या करते हैं और ये किसकी साधना करते हैं। नारद जी ने कहा कि यही प्रश्न मेरे पिताजी के हृदय में, ब्रह्मा जी के हृदय में उत्पन्न हुआ था कि एक समय श्री विष्णु भगवान जी घोर तप कर रहे थे, महान तप कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने पूछा, उनसे पूछा कि हे प्रभु आप तो देवताओं के भी देवता हो, सारी सृष्टि के मालिक हो, आप भी किसकी पूजा करते हो। अब विष्णु जी कहते हैं कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूं और दुर्गा से ऊपर मैं कोई भगवान नहीं जानता, मैं किसी देवता को नहीं जानता। आलिया श्री पर विष्णु जी के और ब्रह्मा जी के और नारद जी के और व्यास जी के उस अध्यात्म ज्ञान का अंत ना व्यास जी ने बेरा कि अराध्य देव कौन है, वास्तव किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, ना नारद जी को पता, ना ब्रह्मा जी को पता और ना विष्णु जी को पता। विष्णु जी कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी और भगवान ने ना जानता, और दुर्गा जी क्या कहती है सातवें स्कंद में, ये प्रथम स्कंद की बात है देवी भागवत की जो अभी आपको सुनाई। अब सातवें स्कंद में 562 पृष्ठ पर दुर्गा हिमालय को ज्ञान दे रही है और ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। कहती है और सब बातें त्याग दे, केवल ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है, वो ब्रह्म लोक में रहता है और किसी की पूजा मत करो, और वही पूजा के योग्य है और कोई पूजा के योग्य नहीं है। अब दुर्गा ने ब्रह्म को फाइनल कर दिया, ओम नाम बता दिया। अब ब्रह्म कहता गीता जी के अंदर 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में यो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके यो सर्वब्रह्म सर्वपुरुष इसको ज्योति निरंजन काल भी कहते हैं, ये श्री कृष्ण जी में प्रेत की तरह प्रवेश करके बोलता है, गीता जी का ज्ञान दे रहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण और ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर का, एक अक्षर का ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और उच्चारण करके सुमरण करने का, और जो अंतिम श्वास तक शरीर त्याग कर जाते समय तक जो इस ओम नाम का जाप करता है वो मेरे वाली गति को प्राप्त होता। अपनी गति को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा उद्धार तो है, नेक है मेरे विचार में, लेकिन ये मेरे वाली ही अनुतम गति में स्थित है, यानी घटिया साधना मेरे वाली घटिया साधना में लीन है, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। अब ब्रह्म तो कह रहा है कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सनातन परम धाम उस सतलोक को प्राप्त होगा, अमर लोक को प्राप्त होगा, फिर तेरा पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। उसके बारे में क्या बताते हैं कि 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्ब्रह्म, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है कि उसको जानने के उपरांत फिर ये प्राणी जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है और किसी वस्तु की चाह उसको नहीं रहती, तो वो कौन किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रश्न किया अर्जुन ने, गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में उसका उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म पुण्यात्मा, आज मानव इतना माइंडेड है, परमात्मा की दया है, इतने बुद्धिमान बच्चे बेटा बेटियां उत्पन्न हो रहे हैं और जो बुजुर्ग हैं वो भी बहुत सहने हो गए, मोबाइल कान कर रखे हैं, हर तरह से मतलब वो बुद्धिमान हो गए हैं, और जो हमारी एज के हैं तकरीबन वो उसमें पढ़ाई शिक्षा शुरू हो गई थी, उससे पहले के हैं वो थोड़े बच रहे हैं और उनको भी समझाया जा सकता है। तो कहने का भाव ये है कि यहां हमने समझना है कि यहां कौन परमात्मा है जिसकी हम पूजा करें। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में और 16 और 17 में यहां 3 परमात्मा क्लियर करे हैं, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का उदाहरण देकर बताया है कि ऊपर ने तो परम अक्षर ब्रह्म है, ऊपर को जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, यानी मूल मालिक। जड़ का अर्थ होता मूल मुख्य। ऊपर को जड़ समझो, जहां से सबकी उत्पत्ति होती है, जो सबसे बाहर अंकुर फूटते हैं, वो जड़ है ऊपर ने उस संसार रूपी वृक्ष की। और नीचे ने तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को सभी विभागों सहित बता देगा कि जड़ मुख्य, जड़ माने मूल मालिक कौन है, और बाहर जो तना दिखाई देता है वो कौन है, उसे मोटी डार निकलती है वो कौन, भगवान है, और वो शाखाएं जो होती हैं वो क्या है। तो परमेश्वर कबीर जी ने आकर ही ये तत्व ज्ञान इस संसार में आध्यात्मिक ज्ञान दिया था, सत्संग बताया था। खुद पूर्ण परमेश्वर ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इस पृथ्वी पर आकर के अपने नियमानुसार, अपने विधान अनुसार वो वहां से चलकर आते हैं, यहां श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं, और फिर उनको तत्व ज्ञान से प्रेरित ओतप्रोत कर देते हैं। तो उन्होंने आकर स्वयं बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो ही इससे बाहर निकलते ही, जमीन से बाहर निकलते ही जो वृक्ष का हिस्सा शुरू होता है वो तना होता है। तो तना तो समझो ये तो अक्षर पुरुष है, अक्षर ब्रह्म कहो चाहे अक्षर पुरुष कहो। फिर उससे आगे एक मोटी डार निकलती है, कई उनमें से एक मोटी डार को समझो वो शर पुरुष है, शर सर पुरुष है, शर शर, इसको हम सीधा देसी भाषा में, संत भाषा में छर पुरुष बोल देते हैं, छर ब्रह्म कहो या इसे छर पुरुष कहो। उस छर ब्रह्म से उस मोटी डार के आगे शाखाएं हैं, तीन शाखाएं, तो तीनों देवा शाखा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, निरंजन भी कहते हैं छर पुरुष को, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। तो परमेश्वर कबीर देव जी ही स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करने यहां आए थे, क्योंकि काल भगवान ने पूरे मानव समाज को शास्त्र विरुद्ध साधना से ओतप्रोत कर रखा है। वो परमात्मा इसी उद्देश्य से यहां आते हैं कि तत्व ज्ञान प्रचार करें, अपने बच्चों को जहां से आए हैं वहां का स्थान बताएं, वहां जाने की विधि बताएं, और वही बताकर जाते हैं। तो यहां बताया है कि तीन, फिर क्या बताया कि जब तुझे तत्व ज्ञान हो जा, पंद्रहवें अध्याय के चौथे श्लोक में, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये प्राणी कभी लौटकर संसार में नहीं आते, यानी वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, या कहने का भाव कि जिस परमात्मा ने इस सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं। अब कंसेप्ट क्लियर कर दिया, गीता ज्ञानदाता किसी और परमात्मा के बारे में बता रहा है कि उसकी शरण में जाने से, उसकी पूजा करने से तत्वदर्शी। और फिर ये पंद्रहवें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी में कहा है कि जो इस सभी विभागों को, इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी सर्वांग को, सब पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, पार्ट्स ऑफ द ट्री को जो भिन्न भिन्न बता देगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, उसके पास सत्संग है। तो यहां बताया है कि जो तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, यानी उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं, और केवल उसी की ही पूजा करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो अविनाशी परमात्मा उसी को जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। अपने विषय में दूसरे अध्याय के गीता जी के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 5वें और 9 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। हम तुम और ये राजा लोग सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी अपना जन्म होता रहेगा। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता अविनाशी नहीं है और ये ब्रह्म है, और ब्रह्म की पूजा से पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता। उसके लिए गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मैं भी उस पूर्ण मोक्ष मार्ग से अपरिचित हूं। उसके लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, कौन से तत्व ज्ञान को, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 2 में, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि बहुत प्रकार के आध्यात्मिक यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखी गई है, कही गई, और उसको तो कर्मों से होने वाली जान और उसको जानने के पश्चात फिर तो सब प्रकार से मोक्ष को, सब बंधनों से मुक्त हो जाएगा। पुण्यात्माओं, जिनको अभी तक किसी को भी तत्व ज्ञान नहीं था, किसी के पास सत्संग नहीं था, जिस कारण से सदग्रंथों के अनुवादों का भी अनर्थ कर डाला इन्होंने। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में इन्होंने गड़बड़ कर दी अनुवादकर्ताओं ने। इसमें लिखा है कि ब्रह्मणे मुखे, और अनुवादकर्ता ने इसका अर्थ कर दिया वेद की वाणी में। नहीं, यहां ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है सचिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म के मुखे माने मुख से उच्चारित उस अमृत वाणी में, उस परमात्मा द्वारा स्वयं बोले गए उस तत्व ज्ञान में ये सब ज्ञान विस्तार से कहा गया है। और उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34 में कहा कि उस ज्ञान को तू, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, परमेश्वर कबीर जी ने जो, उस पूर्ण ब्रह्म ने जो आकर के स्वयं जो ज्ञान अपने मुखारविंद से बोला है, मुख कमल से कहा है, उस वाणी में विस्तार से कहा गया, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और उनको दंडवत प्रणाम करने से कति अधीन होकर के और विनम्रता पर पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस अमृत ज्ञान को बताएंगे, उस तत्व ज्ञान का आपको वर्णन करेंगे। अपनात्मा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने इस ब्रह्मणे का अर्थ ठीक किया है। उसमें क्या लिखा है कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ। इसका इन्होंने ठीक अर्थ किया है कि ओम तत् सत, यह तीन प्रकार का ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने किया है, सचिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र कहा है, बिल्कुल ठीक है। यहां ब्रह्मणे का अर्थ सचिदानंद घन ब्रह्म सही कहा, वहां ये विचल गए, विचलित हो गए कि भगवान गीता बोलने वाला और किस परमात्मा के विषय में बोल रहा है, उस वहां इन्हें गलत कर दिया और यहां ठीक लिखा है। तो वहां सचिदानंद घन ब्रह्म ही आप समझें उस पुस्तक गीता जी में जो गलत लिखा है। थोड़ा सा आपको दिखाते हैं रूबरू करके। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का, ये जय दयाल गोविंद का। श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके श्लोक अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 में इसमें क्या कहा कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया इन्होंने वेद की वाणी में, नहीं यह गलत कर दिया, यह लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मुख से उच्चारित वाणी में, मुखे उसके द्वारा बोले गए ज्ञान में स्वयं आकर बोले यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। अब यहां देखिएगा 70वें अध्याय का, इसमें क्लियर होगा ब्रह्मणे का अर्थ क्या है। अब 23वां श्लोक इसका यहां देखिएगा, इन्होंने यहां अनुवाद ठीक किया है, ओम ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणा है तिर्विध है समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। इन्होंने स्वयं ठीक अनुवाद किया है यहां पर, ओम तत्सत ऐसे यह तीन प्रकार का ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ये ब्रह्मणे वही है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। हम यहां इसको 4वें अध्याय के 32वें श्लोक में हम इस ब्रह्मणे का अर्थ करते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उसके बारे में यहां 4वें अध्याय के ही 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को, अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 34, उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बोला गया है, कबीर वाणी में गया बोला गया है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से कोई और ज्ञान है और उसका बताने वाला भी कोई और है, उनसे भली भांति समझ। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को यानी तत्वदर्शी न वो तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तत्व ज्ञान का तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब इसमें यह स्पष्ट करना था कि इन्होंने यहां अनुवाद गलत कर दिया, क्योंकि जहां भी ये विचलित हो जाते हैं वहीं गड़बड़ कर गए, और भोली आत्माएं थी इनको संस्कृत के ज्ञाता जान करके इनके द्वारा किए गए अनुवाद में कोई जो है शंका नहीं कर पाए। अब इस दास के ऊपर कृपा की परमेश्वर ने, वो ज्ञान वाली अखियां दास की खोल दी और तब ये ज्ञान समझ में आया और आपको दास बता रहा है। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि न तो ब्रह्मा जी को ज्ञान, ब्रह्मा जी को सत्संग प्राप्त, और न विष्णु जी को, न व्यास जी राइटर ऑफ द वेदाज एंड गीता जी एंड 18 पुराण, 18 पुराणों का, गीता जी का और वेदों का जो राइटर है, लेखक है ओनली, वो ज्ञान का वक्ता नहीं है इन वेदों और गीता का। पुराणों में कुछ ज्ञान का वक्ता भी है, लेकिन वेद और गीता का वो केवल राइटर है। और वक्ता कौन है वेदों का? ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, किस ब्रह्मांड का स्वामी है, उसने ये ज्ञान बोला और वेद व्यास को दिव्य दृष्टि दे दी, उसने वो जो कुछ भी एज इट इज वार्ता हुई वो लिख दी, बस इतना सा काम। इनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, इनको सत्संग प्राप्त नहीं था। दास यही आपको क्लियर करना चाहता है कि आज विश्व में किसी के पास भी सत्संग नहीं है। अब दास ने एक शब्द और बोला था कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग्य नहीं है, ये अविनाशी नहीं है। अब ये बातें विशेषकर पवित्र हिंदू समाज में आसानी से स्वीकार्य नहीं है, लेकिन स्वीकार करनी पड़ेगी क्योंकि और विकल्प अब रहा नहीं। हम जिन सदग्रंथों को सच्चा मानते हैं, सत्य ज्ञान युक्त मानते हैं, और उन्हीं ज्ञान में उन्हीं सदग्रंथों में जो लिखा है वो तो आप जी को मानना ही चाहिए और मानना ही पड़ेगा। उसको भी नहीं मानते हो तो फिर आप भक्ति लाइन के व्यक्ति नहीं हो, आप ड्रामा कर रहे हो। आज तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अविनाशी मानते थे, अजरो अमर मानते थे, इनसे ऊपर कोई देव नहीं, कोई मालिक नहीं, इनके कोई माता पिता नहीं, ऐसा हम मानते थे क्योंकि हम सुनते आ रहे थे लोक वेद से। लोक वेद होता है सुना सुनाया ज्ञान, दंत कथा, एक दूसरे का बोला हुआ ज्ञान। और वो लोक वेद यदि सदग्रंथों से मिलता है तो वो सही है, और जो सदग्रंथों से नहीं मिलता है तो वो व्यर्थ है, दंत कथा है, यूजलेस है। तो इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि हम ये ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी लाभ हो रहा है उसके विषय में गीता ज्ञान दाता कहता उसका निमित्त मैं ही हूं, लेकिन ये मुझ में और मैं इनमें नहीं हूं। अपुनात्मा फिर ये काल कहता है कि जिनका ज्ञान इन्हीं तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा हरा जा चुका है, यानी लोक वेद के आधार से इतने इनके ऊपर आसक्त हो गए हैं और इनसे ही मिलने वाले अक्षीणिक लाभ को प्राप्त करके ये उसको अंतिम मान बैठे हैं, उनकी बुद्धि इन तीनों गुणों की महिमा सुनने से, ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा सुन सुनकर इतनी हरी जा चुकी है, इतनी ग्रिप होगी है इनके ऊपर कि वो फिर और नहीं मानते किससे की। और ऐसे उनके विषय में क्या बताया है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले ये मूर्ख, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहते हैं मेरी साधना भी नहीं करते। पहले तो आपको कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये देखिएगा शिवपुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संक्षिप्त शिवपुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। पृष्ठ पे और ये है नौमा रुद्र संहिता अध्याय नंबर 9 के लास्ट में। इसमें क्या लिखा कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं, वो इनसे न्यारा माना गया है। यानी वो काल है शिव, ये काल है जो इसमें शिव की भूमिका कर रहा है। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये रुद्र ये इससे अलग है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यानी तीनों गुणों में, तीनों देवताओं में गुण है,
अंडरस्टूड होगा कि ये रजगुण गर्मा सदगुण विषम तमगुण शिव जी, और ये इनसे अलग है, इससे हमने इतना ही लेना है। अब देखिएगा ये श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग एक ये कहां से प्रकाशित है, अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम खेमराज श्रीकृष्ण दास प्रकाशन बंबई 4 से। और ये तीसरे स्कंद पर हम आते हैं। इसमें क्या लाभ हमें कि हिंदी भी लिखी और संस्कृत भी। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषाटीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। इसके 11 नंबर पृष्ठ पे आप देखिएगा, 11 नंबर पृष्ठ तीसरे स्कंद का अध्याय नंबर 5 के और श्लोक नंबर हम 7 को पढ़ेंगे, 8 को, ये 7वां या खत्म हुआ 8वां। हे माता, शंकर जी बोल रहे हैं, हे माता यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हैं हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया है। ये प्रधान शब्द नहीं है, यह दिखाएंगे संस्कृत में। इसका अर्थ है कि आपने मुझे सत्तमोगुण किस प्रकार बनाया है, प्रधान किया, और ब्रह्मा को रजोगुण और हरि सतोगुण। अब यहां देखेंगे, ये संस्कृत है, 7वां श्लोक अंत हुआ और 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित चय, किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण, किस प्रकार मैं तमोगुण बना दिया, क्यों जन्म दिया, उत्पन्न कर दिया, और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव है, तो किस पर क्यों इसको रजगुण बना दिया, सुवीत किमु तो सतोगुणो हरि, और विष्णु को तुमने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। आज के सत्संग का विषय है, जैसे परमात्मा की वाणी में 3 लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी, कोई 3 लोक और भवन चतुर्दश में कोई भी सत्संगी नहीं है, यानी कोई भी तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, जो सत्संग से परिचित नहीं है कहीं भी सत्संग नहीं होता। केवल दंत कथाएं सुनाई जाती हैं, लोक वेद सुनाई जाती है। अब इससे पहले थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और चिमनलाल गोस्वामी। ये कहां से प्रकाशित है अभी आपको दिखाया, प्रकाशक के मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर तीसरे स्कंद में, इसमें शंकर भगवान जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा, विष्णु जी कह रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव और तिरुभाव हुआ करता है, आविर्भाव माने जन्म, तिरुभाव माने मृत्यु। विष्णु जी कह रहे हैं हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं है, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो, करने वाली तुम ही हो, सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ब्रह्मा रजगुण, विष्णु सतगुण और शंकर तमोगुण, नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपुणात्मा इस प्रसंग से ये कति स्पष्ट हो गया, इस प्रसंग से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, और ये तीनों नाशवान है, इनकी मां दुर्गा है। और एक अलग से सुन दिखाएंगे जो इनका पिता ये काल रूपी ब्रह्म ज्योति निरंजन है, जो शिव पुराण की रुद्र संहिता अध्याय नंबर 5, 6, 7 में स्पष्ट वर्णन है कि काल रूपी ब्रह्म से इन तीनों की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा विष्णु और शिव की, इस महेश की, रुद्र की है। और ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, नियमानुसार जो भी कर्म जिसका है उतना ही फल दे सकते हैं। अब हम पढ़ाएंगे आपको गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक। आपके आसानी तो समझ में आ जाएगी, ये तत्व ज्ञान, ये कड़वी गुनीन जो है आसानी से गले उतर जाएगी। जो दास ने शब्द बोला था कि तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी, आज के वर्तमान का तो कहना ही के है, परमात्मा ने कहा कि तीन लोक और 14 भवन में पूरे ब्रह्मांड में कोई सत्संग से परिचित नहीं है। सत्संगी का अर्थ है सत्य का साथी, तत्व ज्ञान से परिचित व्यक्ति। अब परमात्मा ने यह बात कही उस समय जब वो स्वयं आए हुए थे, तो वो अपने से अतिरिक्त बोलते हैं। तो आज दास कह रहा है कि इस दास के अतिरिक्त पूरे विश्व में किसी के पास भी आध्यात्मिक यथार्थ मार्ग नहीं है, पूर्ण मोक्ष मार्ग नहीं है, शास्त्र अनुकूल साधना किसी के पास भी नहीं है, या चाहे कड़वी लागो चाहे मीठी, बात सच्ची है। अभिमान नहीं, ये बिल्कुल तत्व ज्ञान समझ लेना।